ओम शांति। सभी अभी एक गीत सुन रहे थे, सुना था ना सभी ने? गीत अच्छी आवाज में बजा था, सभी ने सुना होगा। किसका गीत है ये किन्हों का गीत है? लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, यही सुना था ना गीत? गीत की लाइन तो यही थी ना? तो किसका गीत है ये? कौन से बच्चों का? कौन से बच्चों का? और कौन से बच्चों का? देखो सभी बच्चों के लिए नहीं है गीत ये। जिनकी स्थिति सदा ही अचल और अडोल, उनके दिल का ये गीत है। क्योंकि हम बाबा के बने, ब्राह्मण जीवन में आए, माया पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, बाबा का आदेश था, बाबा की श्रीमत है, माया जीत बनना ही है तभी जगत जीत बनेंगे। तो बहुत बातें सामने आती है, बहुत परिस्थिति आती है, बहुत परीक्षाएं आती है, और बहुत पुराने संस्कार हमारी स्थिति को अचल और अडोल बनने नहीं देते। फिर भी ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान को समझा, लक्ष्य को समझा और उस लक्ष्य को पकड़कर निरंतर इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे नहीं आते, रुकते नहीं हैं। उनकी अवस्था इन सब बातों में भी अचल और अडोल रहती। तो ये गीत है उनके दिल का, ऐसी स्थिति वाले बाबा के बच्चों का। ठीक है, तो अभी कहा ने सभी बच्चों का नहीं, आपने कहा कि बाबा के बच्चों का गीत है, पर सभी का नहीं, जिन्होंने अपनी स्थिति ऐसी बनाकर रखी है, लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे। तो बाबा भी हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बातें तो बहुत आएगी, पर हमेशा बाप को साथ में रखो। अगर बाप साथ है तो बातें दूर हो जाएगी और आपकी अवस्था मजबूत बनेगी, मजबूत अवस्था। और कई बार बाबा ये शब्द भी कहते हैं कि बच्चों की हड्डियां मजबूत हो जानी चाहिए, बच्चों की हड्डियां मजबूत हो जानी चाहिए। तो हम तो बाबा के बच्चे आत्मा है, आत्मा के तो हड्डी होते ही नहीं है। फिर भी बाबा ने कहा, इसका मतलब ये है कि जैसे शरीर में भी हड्डियां यदि मजबूत है तो वो व्यक्ति शरीर से बहुत मजबूत है, उसकी हड्डियां कमजोर है तो वो शरीर से भी कमजोर है। और शरीर में भी हड्डियां मजबूत किनकी होती है, यानी उनका शरीर मजबूत शक्तिशाली किनका होता है? जिसके रग रग में ब्लड जाता है, रग रग में ब्लड जाता है, और जहां भी ब्लड नहीं जाएगा वही शरीर का अंग कमजोर हो जाएगा, रोग ग्रस्त हो जाएगा, वहां दर्द शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई उसको बीमारी हो जाएगी जहां ब्लड नहीं पहुंचेगा। और जब इस प्रकार के शरीर में कोई स्थिति बनती है, ब्लड रग रग में नहीं जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, ब्लड को पतला करने की दवा देते हैं। इसका जो ब्लड है ना, वो रग रग में नहीं जा रहा है, सब जगह नहीं जा रहा है, उस अंग को नहीं मिल रहा है जहां पेन है, इसका ब्लड पहले पतला किया जाए, खून को पतला किया जाता है। और कई तो हमेशा ही खून को पतला करने की दवा लेते रहते ताकि उनके रग रग में ब्लड जाए, उनको कोई प्रकार की बीमारी ना हो, उनका शरीर अच्छा रहे, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता रहे। अब ये तो शरीर की बात है, लेकिन बाबा कहते हैं हड्डियां मजबूत हो जानी चाहिए, बच्चों की हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। तो हमारी आत्मा की हड्डी माना, हमारा मन मजबूत, बुद्धि मजबूत और हमारे संस्कार, जैसे बाबा हमको बना रहे हैं, जैसे हमारे संस्कार बाबा बनाना चाहते हैं, देवी देवताओं के संस्कार, फरिश्ते जैसा, उसमें मजबूती, ये तीन हमारे मजबूत होना चाहिए। आत्मा की हड्डी तुम यही कहेंगे ना, आत्मा क्या, मन बुद्धि संस्कार। अब हमारे मन बुद्धि संस्कार, इसमें मजबूती आए तो हम कभी भी कोई भी परिस्थिति में, कोई भी परीक्षा पेपर में, कोई भी प्रकार की बातों में कहीं भी कमजोर नहीं होंगे। बाबा ने ये यज्ञ रचा है, बाबा ने जो यज्ञ रचा है ना, ये रुद्र यज्ञ, ये हमारी संस्था जिसमें हम पल रहे हैं सब, यज्ञ हमारी पालना कर रहा है, हम यज्ञ, यज्ञ से हमें प्यार है, क्योंकि ये शिव के द्वारा, हमारे पिता परमात्मा के द्वारा रचा हुआ यज्ञ है, इस यज्ञ से हमारी पालना हो रही है, यज्ञ में हम पल रहे हैं, यज्ञ में हम निखर रहे हैं, इस यज्ञ में हम पवित्र बन रहे हैं, निर्विकारी बन रहे हैं। तो बाबा भी कहते, बच्चे आप सब हो इस यज्ञ के रक्षक, इस यज्ञ के जिम्मेवार, इस यज्ञ के जिम्मेवार। बाबा ने हमसे यही आशा रखी है कि बच्चे इस यज्ञ के आप जिम्मेवार हमेशा अपने को समझकर चलना। तो इस यज्ञ के प्रति सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी कौन सी है, इस यज्ञ के प्रति हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी सेंटर को चलाना, सेंटर को भरपूर रखना, ये तो खैर हम समझते हैं यज्ञ के प्रति अपनी जिम्मेवारी, यज्ञ में सहयोग देना, यज्ञ का ध्यान रखना, बहनों का ध्यान रखना, सेंटर का ध्यान रखना, हम समझते यही हमारी यज्ञ के प्रति जिम्मेवारी है। लेकिन नहीं, ये तो है ही, लेकिन इसके पहले एक जिम्मेवारी और है, वो सबसे पहली जिम्मेवारी है। तो इस यज्ञ के प्रति हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को हमेशा वो सुंदर बना के रखना, अचल अडोल एक रस बना के रखना, ये सबसे पहली जिम्मेवारी है। और अपनी स्थिति को ऐसा बनाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका है हमारी योग साधना की। हमारे योग की। योग बल भरकर ही, योग में बल भर करके हम अपनी अवस्था को ऐसी मजबूत बना सकते हैं। योग ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसमें सर्व खजानों के भंडार, हमारे सब शक्तियों के भंडार, सब खजानों के द्वार खुल जाते हैं योग बल भर के, योग के द्वारा। कहने में तो ये योग है ढाई अक्षर का, योग शब्द है ढाई अक्षर का, लेकिन यदि हम इसका सही विधि से प्रयोग करें, इसका उपयोग करें, तो 2500 साल की हम अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर बना सकते हैं। अपनी अवस्था को या अपने इस योग को अच्छा बनाने के लिए, योग को पावरफुल बनाने के लिए, योग में स्थिति निरंतर योग बनाने के लिए हमें कुछ बातें ऐसी हैं, यदि हम अपनी धारणा में लाते हैं तो आपका योग भी निरंतर हो जाएगा, आप कर्म योगी भी बन जाएंगे और आप अपनी अवस्था को भी मजबूत बना सकेंगे। वो कौन सी कुछ बातें हैं, किसकी स्थिति कभी हिलेगी नहीं, कैसी भी परिस्थिति आएगी उसका योग कभी टूटेगा नहीं। बातें बहुत आएंगी, परिस्थिति आएगी, लेकिन उसका योग नहीं टूटे, योग उसका कमजोर ना हो, उसकी स्थिति सदैव ही अचल बनी रहे। तो सबसे पहले हमारी धारणा में अगर संतुष्टता का गुण है, जिसके जीवन में संतुष्टता है, तो कहते हैं संतोषी सदा सुखी। जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समार, ऐसा कहते हैं ना। ये संतोष का गुण, ये संतुष्टता का गुण एक ऐसा गुण है जो हमारी अवस्था को कभी बिगड़ने नहीं देता। जहां हम किसी भी बात में असंतुष्ट हुए वहीं हमारी स्थिति हिल जाती है, वो किसी भी बात में हम हिल सकते हैं, कोई भी बात में असंतुष्ट हुए तो। लेकिन जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, एक्यूरेट हिसाब से ही मुझे मिल रहा है, ये बात यदि हमारे दिल में पक्की हो जाती है, हमारे अंदर पक्की हो जाती है, कि जब हम इधर उधर देखते हैं उसको ज्यादा मिला मुझे कम मिला, वही असंतुष्टता होती है। हम उस समय ये बात भूल जाते हैं कि बाबा ने हमें कर्मों की गति का राज क्या समझाया है। कर्मों की गति का राज बाबा ने समझाया है ना, कर्म और उसका फल। हमारे सामने जो फल आ रहा है, मुझे जो मिल रहा है, वो मेरा बोया हुआ बीज ही है, मेरा किया हुआ कर्म ही है, मेरा अपना बनाया हुआ हिसाब किताब ही है। ये बात जब हम भूल जाते हैं तो हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, तब हम इसको और उसको देखते हैं, अंदर संतुष्टता नहीं है। ये उस समय संतुष्टता रहे कि मुझे जो मिल रहा है एक्यूरेट मिल रहा है, जितना मुझे मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है, जिसको ज्यादा मिल रहा है मुझे उससे क्यों ईर्ष्या होती है, उसने ज्यादा किया है पुण्य, तो ज्यादा पुरुषार्थ किया है। अब आप आज की बात देखें, इस समय की बात देखें, इस जीवन की बात है, इस जीवन में तो इसमें कुछ भी नहीं किया है, तो पिछला तो है ना हिसाब किताब, वो तो उसको मिलेगा ना, पिछला जमा है ना। आपका पिछला नहीं है, उसे आप खाली हो गए हैं, आज आप खाली हैं, तो कम मिल रहा है। यदि उस समय मेरी बुद्धि में ये बात रहे कि कोई बात नहीं, पिछला मेरा ऐसा नहीं जो मुझे आज मिले, पर आज मैं ऐसा बना लूं जो मुझे आगे चलकर मिले या इसी जीवन में मिल जाए। ये कर्मों की गुह्य गति, हर कर्म का अपना हिसाब किताब है, और डिटेल में बाबा हमको कई अव्यक्त वाणियों में बताते हैं, मुरलियों में भी समझाते रहते हैं, इसकी जानकारी तो आप सभी को अच्छी तरीके से है। इसलिए स्थिति को बिगाड़ने वाली सबसे पहली बात है, योग को तोड़ने वाली, योग को कम करने वाली सबसे पहली कमजोरी है, कोई भी बात में कोई भी समय असंतुष्ट हो जाना। और इसमें हमेशा कर्मों का गुह्य राज, कर्मों की गुह्य गति का राज हमें बुद्धि में याद रखना चाहिए। एक क्वार्टर सेकंड, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार हैं, ये भी द्वापर से तो हैं ही बने हुए संस्कार, क्वार्टर सेकंड थोड़ी बुद्धि हिलती, मन हिलता है, पर उसी सेकंड आपको यदि ये बात याद आ गई कि मेरी अवस्था, मेरी स्थिति ज्यादा मूल्यवान है, और इस मूल्यवान चीज को मुझे गंवाना नहीं है, इसकी संभाल करके रखनी है, यह अवस्था मेरी स्थिति बहुत मूल्यवान है, वैल्यूबुल, संगम युग में कहते हैं सबसे कीमती चीज अगर है वही हमारी अपनी अवस्था, इसे मुझे संभाल के रखना, वैल्यूबुल चीज को संभाल के रखा जाता है ना, आप इसकी संभाल करो। ये स्थिति में हमेशा एक गुण आज की तारीख में पक्का करो, बाबा के घर में हम आते हैं, दूर दूर से यात्रा करके आते हैं, कई रास्ते की कष्टों को उठा करके भी आते हैं, खर्चा भी करके आते हैं, अभी तो ठंडी अच्छी पड़ रही है, ठंड को भी सहन करते हुए आए हैं, यहाँ पर छुट्टियां की व्यवस्था भी करके आए हैं, कितना मुश्किल से हमने समय निकाला होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, साल में कई तो एक ही बार आते, कई तो कई कई साल में भी आते हैं। जब यहाँ मधुबन में वरदान भूमि में हम पहुँचे हैं, आए हैं, इतनी सब बातों का सामना करते हुए, तो बुद्धि में ये लक्ष्य रखे, बाबा के वरदान भूमि में से मैं कुछ तीर्थ पे छोड़ के आते हैं, कुछ छोड़ते हैं ना, अगर मेरे अंदर ये असंतुष्टता का अवगुण है या संतुष्टता गुण की कमी है, बातों बातों में, छोटी छोटी बातों में असंतुष्ट होने का अवगुण है, और यही अवस्था बिगाड़ देती है, तो वरदान भूमि से, और वो भी अव्यक्ति दिवस पर आप पहुंचे हैं, मैं यहां यही अवगुण, इसी कमजोरी को छोड़ करके जाऊं, ताकि समय को देखते हुए जो हमारी अवस्था मजबूत होनी चाहिए, एक रस बन जानी चाहिए, जैसे बाबा के इशारे हमको मिलते हैं, ये अवगुण मेरा यदि छूट गया असंतुष्ट होने का, तो मेरी स्थिति कितनी सुंदर बन जाएगी। और कोई सुंदर चीज हमको सुख देती है, आनंदित करती है, हमें खुशी में लाती है, तो पहले तो आपको ही खुशी होगी, दूसरे भी आपको देख के बहुत खुश होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है दूसरे भी उसको देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत दूसरों को उसको देखना बहुत अच्छा लगता है, ये कितनी संतुष्ट मणि आत्मा है। कभी हमने इसको डिस्टर्ब होकर नहीं देखा, कभी असंतुष्ट होते हुए नहीं देखा, कभी तनाव में आते हुए नहीं देखा। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, सब में संतुष्ट। मान मिला तो भी संतुष्ट, नहीं मिला तो भी संतुष्ट, थोड़ा मिला तो भी संतुष्ट, ज्यादा मिला तो भी संतुष्ट। ये कितनी अच्छी आत्मा है, ये उसको देखना कितना अच्छा लगता है, ऐसी आत्मा को देखना। तो ये अवगुण यदि आपने छोड़ा तो सबसे पहले सुख खुशी तो आपको ही मिलने वाली है, आपको आनंद आएगा, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आत्मिक सुख उसको कहते हैं ना, हम स्वयं ही स्वयं को अच्छे लगेंगे, स्वयं ही स्वयं को अच्छे लगेंगे। खैर दूसरों को तो अच्छे लगेंगे ही, लेकिन पहले तो हम स्वयं स्वयं को बहुत अच्छे लगेंगे। तो करेंगे ना ऐसा, कहने में तो बहुत सहज रूप से हम संतुष्टता कह देते हैं, लेकिन ये गुणों का क्या कहे, गुणों का राजा है ये। और बाबा भी हमेशा, देखो हमारी यूनिवर्सिटी है ये, हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, बाबा कहते इस यूनिवर्सिटी में आपको सर्टिफिकेट कौन सा लेना है। बाबा किसी गुण के साथ सर्टिफिकेट को नहीं जोड़ते हैं, संतुष्टता के लिए कहते हैं हमेशा बच्चों को, संतुष्टता का सर्टिफिकेट, स्वयं से संतुष्ट, हम दूसरों से, दूसरे हमसे संतुष्ट, ये तीनों सर्टिफिकेट लेना है। बाबा ने कभी किसी दूसरे गुण के लिए ऐसा कहा है, इसी गुण के लिए कहा है। तो हमारे योग को पावरफुल बनाने वाला, योग को एकरस बनाने वाला, योग में बल भरने वाला और स्थिति को अचल अडोल बनाने वाला, यही एक गुण है। कभी अकेले में बैठकर इस पे बड़ा मनन चिंतन करना कि सचमुच ये गुण इतना मूल्यवान है क्या, इस एक गुण को धारण करने में पीछे कितने ढेर सारे गुण आ जाएंगे, गुणों की पूरी सेना ही इसके पीछे पीछे आ जाएगी, ये अनुभव करने की बात है। अनुभव करने, एक दो महीने का टारगेट देना अपने आप को कि दो महीने तक हम ऐसा रहते हैं और फिर इसके पीछे कितने गुण आते हैं कि नहीं आते वो देखना। तो जो यज्ञ में बाबा को सबसे पहला हमारा सहयोग चाहिए जो ये इस यज्ञ में, वो हमारी स्थिति का है, और हमारी स्थिति को बनाने में जो अहम भूमिका है वो हमारे योग की है, और योग को पावरफुल बनाने वाला ये संतुष्टता का गुण है। और दूसरी बात है त्याग, त्याग वृत्ति। संतुष्टता का गुण या संतुष्टता उसी में ही होगी, ये गुण कायम उसमें ही रहेगा जिसमें त्याग वृत्ति है। त्याग करना आता है, कई बार सेवा के क्षेत्र में, संगठन में होती है ऐसी बातें, कोई बात नहीं, नहीं पहले आप इसको चांस दो, कोई बात नहीं इसको पहले आगे करो, हम अच्छे ठीक हैं, नहीं इनको पहले आगे करो, बहुत बातों में ऐसे त्याग। तो जो त्याग वृत्ति वाला होगा वही तो संतुष्ट रहेगा ना। अगर बहुत सारी इच्छाएं पाल के रखी है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं तो कभी भी हमको संतुष्ट नहीं करेगी, इच्छाओं का त्याग ही हमको संतुष्ट बनाता है। तो ये जो इच्छाएं हैं ये संतुष्टता को जैसे खा जाती है, जैसे दीमक होती है ना, दीमक लकड़ी को खा जाती है, पूरी पोला पूरा खोखला कर देती है अंदर से, ऐसे जो इच्छाएं हैं वो संतुष्टता को खत्म कर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, सबसे बड़ी मेरी इच्छा थी जीवन में है प्रभु को पाने की, वो मिल गया, अब कौन सी इच्छा। एक प्रभु मिला, भाग्य विधाता भगवान मिला, उसमें तो सब कुछ आ गया ना, अब बाकी में किसमें इच्छा रही मेरी। भाग्य विधाता मेरा अपना हो गया, भाग्य विधाता ही मेरा हो गया, सारा भाग्य मुझे मिल गया, तो भाग्य में तो वैसे सब चीजें आ जाएगी अपने आप में ही, जिसको हम पाना चाहते हैं, उसके आगे कौन सी इच्छा। जहां इच्छाएं बहुत होती है ना, वहां संतुष्टता कभी नहीं आ सकती है। इसे संतुष्टता का आधार है त्याग भक्ति। और त्याग, जो व्यक्ति जीवन में त्यागी होता है, त्याग वृत्ति को हमेशा रखता है, स्वयं पीछे रहता, दूसरों को आगे करता है, मान दूसरों को ज्यादा दिलाएगा खुद नहीं लेगा, ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जिसमें त्याग वृत्ति। तो आपने संसार में भी देखा होगा, जिसने संसार का त्याग किया है, घर बार का त्याग किया है, आज उनको सम्मान कितना मिलता है। त्याग से ही तो सम्मान मिलता है ना, जो जितना त्यागी होगा उतना वो सर्व का माननीय, सर्व का सम्माननीय बनेगा, सर्व के द्वारा उसको सम्मान मिलेगा, क्योंकि वो सब देख रहे हैं कि इसमें कितने त्याग की भावना है। कभी इसके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ आपको। एक गांव में सत्संग हो रहा था, तो उस गांव में जो एक सेठ था, अच्छा धनवान सेठ था, लेकिन बहुत साधारण रूप से रहता था वो, बहुत माना एकदम बिल्कुल गरीबों जैसा रहता था। तो कई लोग उसको कंजूस प्रवृत्ति का कहते थे कि बहुत कंजूस है, अपने ऊपर भी अच्छे कपड़े नहीं पहनता है, इतना पैसे वाला है लेकिन अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता है, इतना कंजूस है, सारे पैसों को बंद करके रखता है। तो सत्संग कहीं हो रहा था, महात्मा जी आए थे प्रवचन सुनाने, तो उसको सत्संग थोड़ा अच्छा लगता था, प्रवचन सुनने का उसका शौक था, तो जाता था पीछे ऐसे बैठ जाता था, अपने को बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं सेठ हूं, ये नहीं, वैसे ही पहरावे से बहुत गरीब जैसा ही रहता था वो, तो थोड़ा सा देर से भी आता तो एकदम पीछे जूते चप्पलों के पास में बैठ जाता था, पर सत्संग सुनता था, उसको ये शौक था। जब सत्संग कुछ दिनों तक चला और सत्संग पूरा होने का दिन आया, तो महात्मा जी ने बताया कि देखो कल भंडारा है यहाँ पर, सत्संग का प्रवचन पूरा हुआ और कल यहाँ भंडारे का कार्यक्रम है, उस भंडारे में जिसको भी, भंडारे में जब सबका भोजन होता है, जो भी आएगा सबको भोजन मिलेगा, तो बहुत बड़ा भंडारा है, जिसको भी उसमें योगदान देना है वो अपना कल योगदान लेकर के आ सकते हैं, जिसको भी जो इस भंडारे के लिए देना है, सामान लाओ चाहे कैश में लो, जो भी ले। तो सब लाइन से आते जा रहे थे और वो अपना सहयोग सामने रखते जा रहे, जो भी सामान लाए, रुपया पैसे लाए, जो भी लाए, सब रख रख के जाते जा रहे थे। वो सेठ जी भी आए, वो भी काफी ढेर सारा, एक पोटली के अंदर रुपयों की गड्डी, ढेर सारी गड्डियां थी, वो लेकर आए। जैसे महात्मा जी ने सामने, महात्मा जी के सामने रखा उन्होंने, महात्मा जी को आश्चर्य लगा कि बिल्कुल एकदम ऐसे हाल में आता और पीछे बिल्कुल जूतों के पास में बैठ जाता था, और ये तो बहुत सबसे ज्यादा सही हो, इसी से पूरा भंडारा हो जाएगा, एक इसके अकेले के सहयोग से ही आज इतना दिल खोल के इसने यहाँ पर दिया है। तो महात्मा जी ने कहा कि आओ आओ सेठ जी, यहाँ पे बैठो, यहाँ पास में बैठो। बोले कि नहीं महात्मा जी नहीं। बोले नहीं नहीं, बैठो बैठो, पास में बैठो। तो महात्मा, उसने सेठ जी ने बोला कि महात्मा जी क्या ये आज मैंने जो धन दिया है, ये धन के कारण मुझे सम्मान मिल रहा है क्या? तो महात्मा ने क्या जवाब दिया, देखो भाई तुम्हारे धन का सम्मान नहीं है, तुम्हारे त्याग का सम्मान है। धन तो पहले भी तुम्हारे पास था, रोज आके बैठते थे तो धन तो ये तुम्हारे पास में था ना रखा हुआ, आज तुमने उसका त्याग किया तो ये त्याग का सम्मान है। तो कहने का भाव यही है कि जब हम जीवन में कोई त्याग करते हैं या त्याग वृत्ति हमेशा रखते हैं, हर बात में, हर समय, हर परिस्थिति में या हर अवसर पर, जो त्याग वृत्ति वाला होता है वो समाज में सबके द्वारा सम्मान नहीं होता है, उसको सम्मान प्राप्त होता है। तो संतुष्टता का आधार हुआ त्याग, क्योंकि त्याग वाला ही संतुष्ट जीवन में रहेगा। और त्याग का आधार, त्याग किससे होगा, त्याग कौन करेगा भाई, त्याग की भावना किसमें आएगी, जो वैरागी होगा, जो वैरागी होगा, जिसको वैराग आ गया है वो सब कुछ छोड़ देता है। बहुत ऐसे आपने, खैर अपने यज्ञ में भी ऐसे बहुत उदाहरण हैं, हमारे दादियां कितना वैराग आया उनको, नई दुनिया में जा, पुनः दुनिया जाने वाली, भगवान आया हुआ है, अंतिम जन्म है हमारा, वैराग आया ना, सब त्याग कर दिया। बाहरी दुनिया में भी और भी कई संस्थाएं हैं, वहां पर भी देखो बड़े बड़े धनवान लोग भी सन्यासी बन जाते हैं, अपने सारा वैभव छोड़ देते हैं, ऐश्वर्य वैभव सब त्याग कर देते हैं। कई बार ऐसे बहुत किस्से आपने सुने होंगे, बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी था, अरबपति खरबपति था वो, और आज वो साधु बन गया है, उसे सब छोड़ दिया, साधु जैसे कपड़े पहन लिए, कुछ भी नहीं। बाहर के साधुओं का तो त्याग कईयों का होता है, संसार में कुछ भी नहीं रहता उनके पास। तो त्याग का आधार वैराग, जब तक वैराग वृत्ति हमारे अंदर नहीं आएगी, हमको वैराग नहीं आएगा तो त्याग कुछ भी नहीं हो सकेगा। बाबा ने हमको बेहद का वैरागी बनाया है, क्योंकि हद का वैराग और बेहद का वैराग, हद का वैराग जहां कुछ किसी चीज से वैराग या त्याग कर देते हैं कुछ समय के लिए, वो हद का, और बेहद का माना है भी साथ में, उसे कहीं भी बुद्धि मन फंसा हुआ नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे हमको बेहद का वैरागी बनना है, मैं पन का त्याग कर पहले इससे ही वैरागी बनूं। तो वैरागी की निशानी क्या होती है, वैरागी जो होता है, सन्यासी कहो वैरागी कहो, उनकी निशानी वो शरीर पर भस्म लगा के रखते हैं, सब कुछ उन्होंने भस्म कर दिया है, मैंपन को भस्म कर दिया, मेरेपन को भस्म कर दिया है, सब कुछ मेरापन और मैंपन भस्म हो गया है। और वो जो हमने भस्म किया, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं, ये जो हमारी भस्मी है वही शिव को लगाई हुई कहते हैं ना, शिव शंकर को भक्ति मार्ग वाले एक ही बोलते, तो पूरे शरीर में जो भस्मी लगाई हुई है वो हम लोगों की यही भस्मी है, जो हम लोगों ने भस्म किया है ना सब कुछ। एक भस्म आरती होती है उज्जैन में, महाकालेश्वर में, कहते आज भस्म आरती है। तो भस्म आरती क्या होती है कि जहां मुर्दा जलाया जाता है उसकी ताजी राख लाई जाती है और उससे वो शिव का श्रृंगार किया जाता है महाकालेश्वर में, वो भस्म से श्रृंगार होता उनका, उसको कहते भस्म आरती, उस दिन वो आरती होगी। तो बाबा का बच्चे हमने जो अपना सब कुछ, अकेले आए हैं अकेले जाने हैं जाना है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, सिर्फ पुण्य की पूंजी जो हमने जमा कर ली है वही साथ में लेके जानी है, बाकी सब कुछ भस्म कर देना है। सबसे वैरागी, सबसे वैराग। तो त्याग का आधार वैराग। जब तक हमारे अंदर वैराग सब कुछ मिल गया, ये दुनिया जाने वाली है, इसका अंतिम समय चल रहा है, बस ये जाने वाली है, गई की गई, हमारी नई दुनिया आई की आई। स्वयं भगवान आए हैं, और हम उनके बने हैं। अब क्या चाहिए? भगवान मुझे मिल गया, भगवान मेरा अपना बन गया, और क्या चाहिए? जब अंदर में ऐसा वैराग आ जाता है, तो ये दुनिया की कुछ भी चीज में हमारी आसक्ति नहीं रहती, सबसे आसक्ति निकल जाती है, मन वैरागी हो जाता है। बाकी सेवा तो करनी ही है, उन सन्यासियों जैसे जंगल में तो नहीं बैठना है, पर अंदर से पूरी अनासक्त वृत्ति बन जाए, किसी भी मन और बुद्धि अटके नहीं, फंसे नहीं, वो है वैराग। तो त्याग का आधार वैराग। तो हम सभी बीके ये संगम युग के ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने हमको पाठ पढ़ाया है, त्याग तपस्या वैराग। त्याग करना है हमें, तपस्या माना योग की तपस्या करनी है, और पुराने दुनिया से पूरे वैरागी बनना है, और प्रभु मिलन में, बस प्रभु मिलन की मस्ती में मस्त रहना है। ये बस एक ही लगन, दिन भर हमारा मन और हमारी बुद्धि प्रभु मिलन का आनंद लेती रहे, प्रभु मिलन में ही लगी रहे, ये जिसकी स्थिति है वही सही अर्थों में संतुष्ट मणि है, वही सच्चा सच्चा त्यागी है, और वही बेहद का वैरागी है। तो ऐसा ही हमको इस जीवन में लक्ष्य लेकर के चलना है, और ऐसा ही हमें बनना है, तब हमारी अवस्था जो बाबा कहते ना बच्चे, संपूर्ण स्थिति और बाबा की प्रत्यक्षता का समय, हम सभी की जब स्थिति ऐसी अचल अडोल बन जाएगी, वही हमारी कर्मातीत स्थिति है, वही हमारी संपूर्ण स्थिति है, और यही स्थिति हमारे बाबा को भी दुनिया में प्रत्यक्ष करेगी। ओम शांति। सभी योग करेंगे।